नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है सड़क पर होते हादसों से कितने सीख रहे हैं हम। देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। हर साल दर साल हो रहे सड़क हादसे में हम क्या सीख रहे हैं, साथ ही लोगों की लापरवाही का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बीते 3 वर्षों में हेलमेट न पहनने वालों के कारण दुर्घटना में 3,800 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ में कारों में सीट बेल्ट न लगाने के कारण दुर्घटना में 1,750 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। निरंतर बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, परंतु इससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर एवं एक छात्र सारंग भगे जुड़े हैं। दोनों सर का मोबाइल वाणी पे हार्दिक स्वागत। सर
योगेश भाई नमस्कार।
नमस्कार सर।
सर सर्वप्रथम आप ये बताइए सर कि देश में हो रहे सड़क हादसों में हेलमेट के कारण बहुत बड़े हादसों में लोगों की मौत हो रही है, तो ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इसका क्या कारण है?
ये हमसे है ना सवाल?
जी सर।
देखिए योगेश भाई, ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमारी देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उसके जो परिवहन मंत्री जी, वो काफी चिंतित है और राज्य की सरकारें भी हमें कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि खूब अलर्ट है, खूब काम कर रही है। हेलमेट लगाना यह व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है, समाज की अपनी जिम्मेदारी होती है। सरकार आपसे कहती है कि आप हेलमेट लगाइए, आप हेलमेट नहीं लगा के जाते, उनके लिए व्यवस्था की है, पुलिस उनकी चेकिंग करती है, चालान काटती है। लेकिन चालान न कटे यह तो जिम्मेदारी समाज की है, और समाज के लोगों की, जो लोग बाइक चला रहे हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम हेलमेट चलाएं। भाई आप हर बात की अगर हम सरकार से अपेक्षा करें तो सरकार क्या क्या कर सकती है? तो हेलमेट नहीं लगाना यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, और सड़क पर जो हेलमेट के अभाव में दुर्घटना हो रही है वह भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, वो अपने लोगों की जिम्मेदारी है। लोगों को तो चाहिए कि जो मोटर अधिनियम है, जो भारत के लिए नियम बने हैं कि रोड पे कैसे चलना है, क्या लगा करके चलना है, उसको पूरी तरीके से पालन करें। आज देख लीजिए कि हेलमेट कितनी सुरक्षा है अपने लिए। अगर मान लीजिए कहीं हम गिर गए, ठोकर लगा, चाहे किसी गाड़ी से टक्कर हुआ और हम गिर गए और हेलमेट हमारे सर में है, और सर में अगर चोट नहीं लगा हेलमेट के कारण तो हम बच सकते हैं, परंतु अगर पूरे शरीर पे कहीं चोट न लगे और सर में चोट लग गया, हेलमेट न हो, तो उस कंडीशन में हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, असुरक्षित हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, हमारा समाज परेशान होता है, और एक बहुत बड़ा हमारा आय का साधन, बहुत बड़ा हमारी जो बचत होती है वो दवा में चली जाती है। उसके बाद भी लोग, आज देखिए कि कभी कभी लोग सुधर नहीं पाते, ठीक होने के बाद भी पूरी क्षमता के साथ नहीं सुधर पाते, पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाते। तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम हेलमेट लगा करके चले और हेलमेट का जो नियम बना है उसको फॉलो करें। और हेलमेट भी लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए कर लेते हैं। एक नया फैशन चला है कि लोग हेलमेट तो ले लेते हैं लेकिन हेलमेट अपने हैंडल पर रख लेते हैं, चाहे टंकी पर रख लेते हैं, चाहे पीछे बैठने वाले को दे देते हैं। और हेलमेट भी जो ये खरीदने जाते हैं लोग दिखावा के लिए, पुलिस से बचने के लिए 100-150 रुपया का हेलमेट खरीद लेते हैं जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो हमारा तो यह मानना है कि आप पुलिस को दिखाने के लिए हेलमेट न खरीदें, आप अपने जान को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए हेलमेट रखें। पुलिस के डर के लिए और चालान से बचने के लिए हेलमेट न रखें, वह बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चालान कटेगा तो 100-150 रुपया का कटेगा, लेकिन एक बार अगर आप इंजर्ड हो गए तो आप में लाखों रुपया लग सकता है। तो आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट साइड वाले को न दीजिए, आप हेलमेट लगा कर चलिए। हेलमेट लगा कर चलने से आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और पूरे लोग भी सुरक्षित रहते हैं और सामने वाला आना भी सुरक्षित रहता है।
जी सर। सारंग जी आप ये बताइए कि युवाओं में बहुत अधिक तेज रफ्तार से ड्राइविंग करना और हेलमेट न लगाना क्या कारण नजर आता है, युवा ऐसे क्यों भ्रमित हो रहे हैं?
जी आज के जो युवा है वो बहुत ही तेज काम करने के लिए देखते हैं सर। जैसे कि हमारे भाषा में कहे तो बड़ी घाई में रहते हैं, तो हमने देखा है कि जो आजकल जो बाइक वगैरह आती है वो भी बड़ी स्पीड और महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं लोग, लेकिन उसमें हेलमेट वगैरह नहीं रहता उनके पास, और बहुत ही तेजी से चलाते हैं। और फैशन बन गया है सर एक गाड़ी जो है तेज चलाने का, और खुद के प्रति असुरक्षा बरतने का जो ये काम करते हैं, तो जी
सर जी, इसी को लेकर आपका एक सवाल है कि भारत में सड़कों की गुणवत्ता में विश्व में 46वें नंबर पर हिंदुस्तान की सड़कें आती है सर, और इसी को लेकर सर सड़क हादसों में विश्व में 30वें नंबर पर आती है सड़कें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की सड़कों की गुणवत्ता किस तरीके से देखते सर आप?
देखिए, हिंदुस्तान के जो सड़कों की गुणवत्ता का सवाल है, तो अपने देश के अंदर देखिए कि हर चीज में अगर सीधी सीधी बात कहा जाए तो हर चीज में कालाबाजारी हो गई है, और कालाबाजारी के कारण हमारी जो व्यवस्था है गुणवत्ता की किसी भी क्षेत्र में वो खराब होती जा रही है। आज देखिए कि रोड बनाने वाले जो ठेकेदार है उनका अगर पूर्व की संपत्ति, जिस दिन ठेकेदार नहीं बने होते, अगर उनके पूर्व की संपत्ति की जांच कर लिया जाए और ठेकेदार बनने के बाद की संपत्ति की जांच कर लिया जाए तो धरती आसमान के उनके संपत्ति के अंतर आ जाता है। ये संपत्ति कहाँ से आती है? उसमें चैनल बने हुए हैं कि जहां से ठेका निकलता है, जहां से रोड का टेंडर निकलता है, वहां से चलते चलते सब लोग कमीशन लेते चले जाते हैं। जो विदेशों की बात है, वहां पे हो सकता है कि इस टाइप की व्यवस्था नहीं हो, हमको तो कभी जाने को नहीं मिला, हमने तो कभी देखा नहीं, विदेश तो हम गए ही नहीं कभी, तो हो सकता है कि वहां पे इस टाइप की व्यवस्था ना हो। लेकिन अपने यहाँ जो सड़कों का गुणवत्ता नहीं हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार निचले लेवल पे नहीं है, भ्रष्टाचार टॉप लेवल पे, भ्रष्टाचार टॉप अधिकारियों पे, भ्रष्टाचार नौकरशाही पे, क्योंकि बिल नौकरशाही पास करती है, ठेकेदार बिल पे साइन नहीं करता है, ठेकेदार ठेका लेता है, टेंडर भरता है। अगर नौकरशाही, अगर ठेका देने वाले और यह ब्यूरोक्रेट और यह जो रोड के इंजीनियर होते हैं, चाहे जो पर जो विभाग होता है PWD उसको बोलते हैं, अगर वो लोग ईमानदार होते तो रोड की गुणवत्ता भी ईमानदारी पूर्ण होती। तो आज रोड की जो गुणवत्ता नहीं है, रोड जो खराब हो रहे हैं, जिनमें कोई गुणात्मक लक्षण नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकारी कर्मचारी है परिवहन ये PWD के और उसके देख रेख करने वाले जो ब्यूरोक्रेट है, IAS लेवल के अधिकारी है, ये भ्रष्ट है। अगर ये अपने भ्रष्टाचार और अपनी नीति को सही कर लेते, भ्रष्टाचार त्याग देते, अपने आचरण में नैतिकता ला दे, तो हमारे देश के रोड सही रहते। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे बनाने के लिए रोडों को भेजती है, वह रोड भी अच्छा बनता है, पैसे का उपयोग भी होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट संरक्षण प्राप्त किया है, किसका संरक्षण प्राप्त किया है? देश के विधायकों का, देश के मंत्रियों का, देश के मुख्यमंत्रियों का, देश के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का, इन लोगों का संरक्षण उसको प्राप्त रहता है, और उनके संरक्षण में यह लूटपाट करते हैं, और इनके लूटपाट करने का परिणाम यह निकलता है कि इनकी झोलियां तो भर जाती है, इनके घर तो चल जाते अच्छे से, लेकिन जो रोड होनी चाहिए आम जनता के लिए वो ठीक नहीं हो पाती है। तो यह जरूरत है कि पहले सरकारी जो कर्मचारी है वो नैतिक बने, नैतिकता को अपनाए, सत्यता को अपने आचरण में लाए, और तब जाकर के काम करे, और जो मॉनिटरिंग कमेटी है वह भी ठीक तरीके से काम करे। बिना ठीक से काम किए हम रोड की गुणवत्ता को नहीं सुधार सकते हैं। रोड की गुणवत्ता को अगर सुधारना है तो हमें अपने आचरण को सुधारना होगा, तब जाकर के होगा। रही विश्व में अपने नंबर की बात, तो विश्व की परिस्थितियों से भारत की परिस्थितियां अलग है, और आज देखा जा रहा है कि हम रोड के मायने में जो मोटे मोटे है हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन सवाल गुणवत्ता का ही आता है। तो गुणवत्ता पे अगर भ्रष्टाचार की नीति को रोक लिया जाए तो रोड अच्छे हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है।
जी सर, क्या दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए कानून कितना प्रभावी है, और लोगों की जो लापरवाही है, चाहे सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो, नहीं लगा पाने के पीछे कानून कितने प्रभावी साबित हो रहे जमीन स्तर पर?
जी, तो ये योगेश भाई हमने पहले ही बोला कि सामाजिक दायित्व है, व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप कानून के हिसाब से गाड़ी नहीं खरीदने जाते, कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे। कानून का जो परसेंटेज की बात है कि कितना दायित्व है, वह मुश्किल से 20% है। कानून में कमियां कहाँ पे है कि कानून में जो लोग बैठे हुए, लाइसेंस का ही प्रोसेस ले लीजिए, अपन लाइसेंस से शुरू करते हैं। लाइसेंस आज उन लोगों का बनता है जो 2 व्हीलर चलाना भी नहीं जानते, और उनको 8 चक्के का लाइसेंस दे दिया जाता है। उनके लाइसेंस को देख लीजिए उठा करके, तो चलाना नहीं जानते लेकिन उनका लाइसेंस पहले बन जाता है। वहां पे भी भ्रष्टाचार है, कमीशन के बेस पर लाइसेंस बन रहे, दूसरा कि जो पुलिस चेक करती है रास्ते में, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे राज्य की पुलिस हो, अब राज्य के पुलिस वाले क्यों चेक करते हैं आज तक हमको यही समझ में नहीं आया कि क्या वो रोड के पुलिस है कि ट्रैफिक के पुलिस है, आज तक यही समझ में नहीं आया। कभी कभी सफेद पुलिस, सफेद वर्दी वाले भी चेक करते हैं और कभी कभी खाकी वर्दी वाले भी चेक करते हैं, तो ये समझ में नहीं आया कि चेक कौन करता है। तो वहां अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है, अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे तो उनके नियम के अनुसार आप उनको 200 रुपया दे दीजिए, चार चक्का है तो 500 रुपया दे दीजिए, और कुछ कमियां है तो 1000 रुपया दे दीजिए, आपकी सारी गलती माफ हो जाती है। तो कानून में ये 20% 10% की कमियां है, लेकिन जो 80% कमियां है, जो दुर्घटना हो रही है, वह व्यक्ति के स्वयं के सोच के कारण हो रही। एक तो टू व्हीलर चलाने वाले और कार चलाने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों का ओवरटेक कर रहे हैं, अपने साइड छोड़ करके चलते हैं। आज बाइकें इतनी आ गई है बड़ी बड़ी, जिनको बाइकर बोल रहे हैं, तो इतने बाइकर पैदा हो गए हैं, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, उनको उनको पता ही नहीं कि स्पीड क्या होती है, और कहीं ना कहीं जाकर के टकरा जाते हैं, अपने तो गिरते हैं, दूसरे को भी ठोकर मारते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। तो इसमें कानून की 20% कमियां है, 80% कमियां व्यक्ति के स्वयं की है, 80% कमियां वो समाज के लोगों की है जो इस बात को नहीं अपना रहे, जो कानून को समझना ही नहीं चाहते। तो समाज को नैतिक बनना होगा, समाज को कानून को समझना होगा, तब जाकर के हम कानून का पालन कर सकते हैं।
सारंग भाई, युवाओं में कानून को लेकर क्या कमियां हैं, और युवा जिस तरीके से लापरवाही निरंतर बरतता जा रहा है और दुर्घटना का शिकार हो रहा है, नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, आप भी एक युवा हो, क्या सोचते हैं सर आप यातायात के नियमों को लेकर?
हम जब देखते हैं सर समाज में, जब कोई युवा गाड़ी चलाता है तो जब वो रास्ते से गुजरता है तो जैसे कहीं पुलिस खड़ी होती है या नाके पे होती है, तो जब जैसे ही पुलिस दिखती है तभी वो हेलमेट या कार चला रहेंगे तो सीट बेल्ट बांधते हैं, उसके बाद वो खोल के रख देते हैं। तो ये एक असुरक्षा का कारण हो सकता है, वो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है और कानून का पालन नहीं कर रहे, बस जब सामने पुलिस हो या और कोई व्यक्ति हो तो उनके लिए, उनके वो दिखावे के लिए वो करते हैं, और उसमें उन्हीं के असुरक्षा होती है और उन्हीं का नुकसान होता है।
एक युवा होने के नाते आप भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ ही आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि इन कानूनों का पालन किया जा सके?
जी, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो जो गाड़ी है वो हमेशा नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहिए। जैसे मैं चलाता हूँ, हमारी जो स्पीड है वो 60 के ऊपर मैं बहुत ही कम लेके जाता हूँ। इमरजेंसी में भी मैं नहीं चलाता ज्यादा स्पीड, क्योंकि अगर मुझे जल्दी भी पहुंचना होता है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन मैं स्पीड नहीं चलाता। और लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो घर से जल्दी निकले और थोड़ा जल्दी पहुंचे, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी की स्पीड ना बढ़ाए, और किसी को किसी के नजदीक से गाड़ी, मतलब किसी को टच करके गाड़ी ना चलाए, सीधी गाड़ी चलाए। अभी हम देखते हैं कि आजकल के युवा जो है टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं झुका के, तो अगर अच्छे से गाड़ी चलाए तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो चला रहा होता है वो भी सुरक्षित रह सकता है।
डॉक्टर साहब, ओवर लोडिंग का कानून बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ ही हर साल 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है दुर्घटनाओं के कारण, ऐसा क्यों सर?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग अपनी नैतिकता को नहीं समझ रहे, रोड के नियमों को नहीं समझ रहे, जो ट्रैफिक के नियमों को नहीं समझ रहे। और दूसरी जो कमी है योगेश भाई, वो ये है कि बिना आवश्यकता के लोग भी गाड़ी खरीद लिए है, और कंपनियां कार बेचने के चक्कर में किसी को भी कार दे रही है। उसके लिए एक नियम बनना चाहिए कि एक घर में एक कार होना चाहिए। आप देख लीजिए कि कुछ कुछ घर में जितने नौजवान है उतनी बाइकें हैं, जितने लोग हैं उतने कार रखे गए हैं। तो ये होने के कारण क्या हो रहा है कि रोड पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ने के कारण हो रहा है कि जाम लग रहा है, और जाम में लगने के कारण समय का नुकसान होता है। तो लोग सोचते हैं कि हम अपना समय बचा लें और कहीं से भी बीच से निकलने का प्रयास करते हैं। तो पहला कारण ये होना, पहला तो ये होना चाहिए कि कार किस आधार पर लोगों को दिया जाए उसका आधार तय हो, टू व्हीलर किसको दिया जाए इसका भी आधार तय हो, और सख्ती के साथ लाइसेंस के नियमों को पालन किया जाए। दूसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ योगेश भाई, आप उस पर ध्यान विकेंद्रित करिएगा कि आप देख लीजिए, आप रामा कोना में रहते हैं और मैं रहता हूँ इधर सावनेर, तो रामा कोना से सावनेर के बीच में जो बसें चलती है चाहे टैक्सियां चलती है, बस के रुकने का एक नियत स्थान तय किया गया है। मान लीजिए बोरगांव के जगह ले लीजिए, तो बोरगांव में एक बस स्टॉप बना है, बस को वहां रुकना चाहिए। लेकिन बसें जो है बोरगांव के हर गली और हर चौराहे पर रुकती है। उसका कारण क्या होता है कि उसके पीछे वाला जो व्यक्ति आता है वो तो समझ नहीं पाता है कि बस रुक रही कि क्या हो रही है, उतने स्पीड से आता है, वो अपनी स्पीड कम करने के चक्कर में ठुक जाता है या गिर जाता है। तो एक तो प्रशासन को दूसरी बात ये करना चाहिए कि जो नियत जगह है वहीं पे बस और वहीं पे स्टॉप, वहीं पे फोर व्हीलर भी रुके और वहीं पे बस भी रुके, हर रोड पे ना रुके, लोगों के घर के सामने ना रुके, लोग जहां हाथ दे रहे वहां ना रुके। अगर अपने नियत स्थान पर रुकेगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी, पीछे से आने वाला व्यक्ति उसमें टच नहीं होगा, ठोकेगा नहीं। तीसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए आपके क्षेत्र में कितने ब्रेकर बने होंगे, एक बार ब्रेकरों का अध्ययन करिए आप, जिसको आप अपने भाषा में ठोकर कहते हैं, उनका अध्ययन करिए। तो उसका कुछ नियम है कि जो छोटे ब्रेकर है उसको सफेद कलर से किया जाए, कुछ ब्रेकर है उसको पीले कलर से किया जाए, कुछ ब्रेकर होते हैं जिसको ग्रीन कलर से किया जाता है। लेकिन पूरे इस बेल्ट में देखा जाए तो कोई ठोकरों पे कलर नहीं लगाया गया ब्रेकरों पे। तो समझ में नहीं आता है कि ब्रेकर है कि नहीं है भाई। टू व्हीलर वाले फोर व्हीलर वाले तो अपने स्पीड से चल रहे हैं, जो उनकी स्पीड है उससे चलते, लेकिन उनको समय, और जब अचानक उनके सामने ब्रेकर आता है तो ब्रेक लगा करके गिर जाते, वहां पे उनके सर फट जाते, एक ब्रेक, ये सबसे बड़ा कारण। तीसरी यह बात थी कि ब्रेकरों को कलर किया जाए। इस बात को न मीडिया छाप रही है, न ही कोई प्रिंट मीडिया उठा रही, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा रही। हमारे जो पत्रकार बंधु भी बने हैं पेपर छापने वाले, वो भी इस पे लिपापोती कर देते हैं, कुछ करते नहीं है, जबकि दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी इस समस्या को नहीं देखते कि ब्रेकर किस स्थान पर बनाए, किस लिए बनाए, इसका नियम क्या है, उसको कभी उठाते नहीं। तो ये दुर्घटना के कारण है। लेकिन जो नियम है, जो आप बता रहे थे कि 12,000 मौतें हो रही, 12,000 नहीं हो रही है, ये लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर जा रही पूरे हिंदुस्तान को अगर देख लिया जाए तो उसका अधिक से उसमें 50% कारण तो व्यक्ति के स्वयं के कारण है, और 50% जो कारण है वह ये कंपनियों का कारण है, जो मोटर कार टू व्हीलर बेच रही है, ये गाड़ियों का न रुकने का कारण है, गाड़ियों का कहीं भी रुकने का कारण है, पुलिस प्रशासन की जो भ्रष्टाचार की नीति है वो है, परिवहन विभाग की जो भ्रष्टाचार की नीति है वो है। तो 50% जिम्मेदारी नागरिकों की, अगर नागरिक अपनी 50% जिम्मेदारी सुधार लेता तो उधर पुलिस भी मजबूर हो जाती, वो भी अपनी नीतियों में बदलाव लाती और इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम होती जाती।
जी सर। सारंग भाई, आप मुझे ये बताएं, शहरी के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटनाओं में अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, इसके क्या कारण है, और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता को किस तरीके से देखते हैं?
ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों की गुणवत्ता है वो शहरी क्षेत्रों से कम है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का अड्डा है वहां पे सबसे ज्यादा है। शहर में तो आप एक बार जा करके देखिए कि कुछ लोग चेक करने वाले पहुंच भी जाते हैं, लेकिन गांवों में नहीं पहुंचते। गांवों में तो आधा मिट्टी भर देते हैं, जहां पे गिट्टी और कंकड़ भरना चाहिए, रेत भरना चाहिए, वहां पे मिट्टी भर देते हैं। उसमें रोड आधा तो बारिश के पहले दिन, जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है रोड टूट जाते हैं। दूसरा कारण है कि गांव में जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, क्या उनके सभी लोगों के पास लाइसेंस है? जो कार चला रहे हैं, आज देख लीजिए कि आपके रोड पे ये चलती है, क्या बोलते हैं आप उसको, मैक्स और क्या क्या बोलते हैं उसको, बोलोरो, कौन सी गाड़ियां चलती है, क्या वो गाड़ियों को रोड पे चलने का मानक है? किसी गाड़ी में लाइट नहीं है, तो किसी में ब्रेक नहीं है, तो किसी के सीट बेल्ट नहीं है, लेकिन रोड पे चल कैसे रहे? कहीं ना कहीं उनकी पुलिस से मिली भगत है, कहीं ना कहीं पुलिस उसको खा रही है और पुलिस को खिला रहे तभी रोड पे चला रहे। तो और गांवों में जो लोग चल रहे हैं उसमें मैंने बोला कि लाइसेंस नहीं उनके पास, तो सभी लोगों के पास लाइसेंस नहीं, बहुत कम लोगों के पास, 10% लोगों के पास लाइसेंस है। जब लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी कैसे चला रहे? तीसरी जो बात है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह दारू की दुकान खोल दी गई है, हर गांव को टच कर रही है एक शराब की दुकान, और गांव के लोग शराब पी रहे हैं क्योंकि वहां पे सस्ती मिल जाती है कुछ, और कुछ व्यवस्था हो जाता है, ये लोग शराब पी करके गाड़ियां चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर में लोग पी करके चलाते, शहर में भी लोग पी के चलाते हैं, लेकिन उनका एक कायदा होगा, कुछ नियम होगा। लेकिन गांवों को अगर सुरक्षित रखना है तो शराब की दुकानें बंद किया जाए और लोगों को चलने दिया जाए। अब बोलिए
सर, मैं इसी को लेकर एक सवाल था मेरा वाला, आप संक्षेप में थोड़ा उत्तर दीजिए।
जी, जी।
हाल ही में एक कानून बना है इसको लेकर कि कार में अगर पीछे का कोई इंसान व्यक्ति बैठा हो तो वो भी सीट बेल्ट लगाएगा, अनिवार्य हो गया है इसको। इस पहल को किस तरीके देख रहे सर आप? संक्षेप
नहीं
में।
देखिए, ये तो सवाल उस समय खड़ा हुआ जब टाटा के चेयरमैन साइरस की मृत्यु हुआ।
जी
इसके पहले हमारे परिवहन विभाग कहाँ थे भैया? इसके पहले हमारे केंद्रीय मंत्रालय परिवहन मंत्रालय कहाँ था? साइरस के मृत्यु पे हमको भी दुख है, मैं दुख प्रकट करता हूँ और मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन साइरस उतने बड़े व्यक्ति थे, उनके मरने के बाद ये सब हाईलाइट किया गया है। क्या उसके पहले लोग नहीं मरते थे दुर्घटनाओं में? उसके पहले क्यों नहीं कंपनियों ने बोला कि सीट बेल्ट लगाया जाए? यानी आम आदमी मरे तो कोई कीमत नहीं और बड़ा आदमी मरे तो व्यवस्था बदलाव किया जाए? यह एक शासन और प्रशासन की कमियां है। शासन और प्रशासन को शुरू से चाहिए था कि पीछे बैठने वाले भी बेल्ट लगाए, और नहीं बेल्ट लगा रहे हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनकी गाड़ी को पकड़ा जाए, उनको रखा जाए, पैसे लेकर के न छोड़ा जाए। तो जितने भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा कारण है परिवहन विभाग की पुलिस और RTO, ये पैसे लेकर के छोड़ते हैं और पैसे पे काम करते हैं। तो सबकी मृत्यु बराबर होती है, चाहे वो
जी
बड़ा हो या छोटा हो, दुख सबको बराबर होता है। तो यह पीछे का जो सीट बेल्ट का आया है, ठीक है, इस नियम का स्वागत होना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए कि जितने लोग बैठे हो सीट बेल्ट लगाए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके।
जी सर, तो मोबाइल वाणी पर सड़क के हादसों से कितने सीख रहे हम, इस विषय पर आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप सर एवं छात्र सारंगी ढगे ने मोबाइल वाणी के माध्यम से इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखी। सारंग भाई, डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।